हरे कृष्ण। सभी पंजाबी विभाग वासी राधा राधिका रमण के सेवक सेविका वृंद को स्वागत है। इस कोल्ड विंटर मॉर्निंग में यहाँ पधारने के लिए तो आप सबको तो पता था, मुझे नहीं पता था कि आज श्री जीव गोस्वामी जी के आविर्भाव है। तो एक वैष्णव गीत गाते हैं, ए बारा करुणा कर वैष्णव गोसाई। मेरा गाना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग कृपा करके एडजस्ट कर लेंगे। हे वैष्णव गोसाई, कृपया इस बार मुझ पर करुणा करें। आपके बिना पतित जीवों के पावन करने वाला और कौन है? ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। गंगा जल में उन अनेक बार स्नान करने के बाद ही कई शुद्ध हो पाता है, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती है। यही आपका महान गुण है। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्ति हरि नाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि निस्तार संभव नहीं है। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदा विराजमान रहते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं कि वैष्णवगण मेरे प्राण हैं, अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूँ। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। तो जैसे सबको विदित है कि आज एक महान तिथि है जिसमें हमारे गौरांग महाप्रभु के अति निकट पार्षद, दो पार्षदों के आज तिथि हैं। तो विशेष करके श्री जीव गोस्वामी जो हमारे छह गोस्वामी के अंदर एक हैं, छह गोस्वामी हम इसलिए कहते हैं कि हमारे जो लक्ष्य है ब्रज धाम वृंदावन, इसी वृंदावन को हमको जो प्राप्त कराए जो दिए उन्हीं के मुख्य निमित्त है ये छह गोस्वामी। अगर वो ना होते हम ये वृंदावन नहीं जानते वृंदावन क्या है, कैसे किधर है, ना नहीं जानते। तो ये छह गोस्वामी का ऋण हम जन्म जन्मांतर में उतार नहीं सकते कि इन्होंने इस भौतिक दुनिया को वृंदावन को दिए हैं। इसलिए वृंदावन के छह गोस्वामी ऐसे कहा गया हमेशा, इस वृंदावन के छह गोस्वामी वृंदावन धाम पूरे ब्रजमंडल और वृंदावन में आपने छह पूजित देव विग्रह वो हम लोग को देख गए हैं। तो उनमें से उन छह गोस्वामियों से एक परिवार आधा 50% रखते हैं अपना हिस्सा, हाँ ओनली वन फैमिली कवर्स 50%। और एक ही परिवार थे कौन जो गिनते हैं, रूप सनातन और जीव गोस्वामी, तीनों एक ही परिवार के थे। सारे गोस्वामियों में छह गोस्वामियों से वयोज्येष्ठ वरिष्ठ बड़े सबसे थे श्री सनातन पाद, वो थे बड़े भाई, उनके अनुज सहोदर श्री रूप गोस्वामी थे और उनके सहोदर रूप और सनातन उनके भाई रूप, रूप के नीचे और एक छोटे भाई थे जिनका नाम था अनुपम। सनातन जी के रूप जी के तो कोई पुत्र संतान आदि थे नहीं, तो उनके जो छोटे भाई थे तीसरा नंबर के जिनका नाम था अनुपम, उनके एकलौती बेटा थे जिनके नाम थे श्री जीव। ऐसे कई आचार्यों से मैंने सुना कि वास्तविक जीव गोस्वामी का नाम जीव गोस्वामी इसलिए है क्योंकि हम जैसे जीवों के लिए गोस्वामी हुई है, बाकी बाकी जो गोस्वामी है ये तो भगवान के लिए है, उनके सेवा के लिए, जीवों के लिए अगर कोई है तो वही है। हाँ, इसलिए उनका नाम जीव गोस्वामी, जीव के लिए हुई है, बाकी तो भगवान के लिए है। हाँ, इंद्रिय आपने संयम कर लिए थे, गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब जो इंद्रिया को आपने वश में किए, वो आपने अपने इंद्रिय को वश में किए थे भगवत प्रत्यार्थ है, भगवत सेवा के लिए। लेकिन भगवान की एक इच्छा है ये बद्ध जीव भी उद्धार होकर मेरा पास आए, ये प्रोजेक्ट केवल उन्होंने लिए थे, इसलिए उनका नाम रखा गया जीवों के गोस्वामी, इसलिए जीव गोस्वामी। हम जैसे पतित बद्ध जीवों के लिए वो अपने इंद्रिय संयम करके अपने पूर्ण प्रयास अपने अवधि को पूरा लगाए थे। ऐसे कहा जाता है किसी जीव गोस्वामी द्वितीय व्यास है, श्री व्यास देव ने अपने अवधि में लगभग कई वेद पुराण उपनिषद आदि लेके लगभग 400,000 संस्कृत के श्लोक आदि की रचना किए, और इसे कहा गया जीव गोस्वामी भी 400,000 लिखे हैं, उससे ज्यादा कम नहीं है। तो इसलिए आधुनिक जगत के व्यासदेव वही हैं, जिसे व्यास विशाल बुद्धि ये संसार के लिए ज्ञान मुद्रा है, इसे ज्ञान के रूप भगवान के व्यास जी को माना जाता है। तो हम तो व्यास शास्त्र को पढ़कर समझ नहीं सकते, तो इस आधुनिक जगत के पतित जीवात्माओं के व्यास के रूप में श्री जीव गोस्वामी है, जीव के लिए ही गोस्वामी है। उन्होंने अनेक अपने श्लोक लिखे हैं, व्यास जी की रचना के साथ समान है, इतने ही रचना की है उन्होंने, बहुत अद्भुत अभिनव रचनाएं किए हैं। यहाँ तक तो संस्कृत के जो व्याकरण था पाणिनि आदि के द्वारा जो पढ़े हैं संस्कृत व्याकरण पाणिनि का, वो जानते हैं दांत निकल जाएगा उसका सूत्र याद करने से, उच्चारण करने से, इसी सब कठिन है। लेकिन उसको उन्होंने बोले इसके पीछे इतने टाइम क्यों खराब करे, जिह्वा दांत सब दर्द करेगा, उस सूत्र को पढ़े याद करे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एक व्याकरण लिख डाले सेम अर्थ और सेम उद्देश्य के लिए, हरि नाम के ऊपर एक हरि नाम अमृतम व्याकरण, और जिसमें सारे सूत्र को हरि नाम से दे दिए। तो आप अगर बोलेंगे मैं व्याकरण पढ़ूंगा मेरा चैंटिंग व्याकरण, चैंटिंग व्याकरण पढ़ने चैंटिंग हो जाएगा। यस, तो नाम को ही ऐसे किए कि वो नाम ही है, हरि नाम ही है, पूरा व्याकरण ही हरि नाम कर दिए। अभी भी वैष्णव जगत में बड़ी प्रसिद्धि है इस संस्कृत व्याकरण का, जिनका नाम है हरि नाम अमृत व्याकरण, हरि नाम के अमृत है उसमें, और साधारण ग्रामर नहीं है, व्याकरण नहीं है। तो इस प्रकार हम जीव गोस्वामी के जीवनी में देखते हैं कि निश्चित रूप से तो इस भौतिक जगत के जीव तो थे ही नहीं, ये तो निश्चित रूप से उन्होंने मंजरी तो थे ही, पूरे सपरिवार सखी मंजरी सब थे, भगवान के अंतरंगा नित्य पार्षद थे, कोई ये भौतिक उन्होंने क्या कहते हैं जो हमने तीन शक्ति है ना, तटस्था शक्ति के अंतर्गत भी नहीं माना जाएगा, वो तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत थे, भगवान के नित्य सेविका गण थे। लेकिन ऐसे होते हुए भी भगवान के नित्य पार्षद उनके धाम में नित्य सेवा में नियुक्त होते हुए भी इतने बड़े तकलीफ उठाए, इतने कष्ट उठाए हम जैसे को उद्धार करने के लिए, और उनका मन में और कुछ नहीं था। हम लोग को अगर बोलेंगे यहाँ जाओ, यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन के सामने नहीं जाते, इस जगह हमको क्यों भेजते हैं। लेकिन अब पूरे भौतिक संसार को बताओ, हम तो एक जगह में एक टेम्पल में एक हिस्सा में हमारे सर फट जा रहा है, और पूरे समग्र भौतिक ब्रह्मांड के सकल जीव के टेंशन को सेट करने के लिए, उनको सुधारने के लिए गोस्वामी लोग रिस्क लिए, और उनमें से जीव गोस्वामी हाई रिस्क लेकर के आए, इसलिए जीव गोस्वामी है। तो उन लोग ने भगवान की गुण, भगवान के नाम, भगवान के लीला को इस दुनिया के बद्ध जीव के सामने प्रकट करके उनके उद्धार करने के लिए ये उनके जीवन के लक्ष्य चुने थे। तो इसलिए उनके भाग्य हम नहीं कह सकते, भाग्य तो हम लोग का, उनका भाग्य क्या है, उनका कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता, दुर्भाग्य सौभाग्य क्या है, तो भगवत पार्षद है, उनको कहेंगे कि उनके सौभाग्य था इसलिए, नहीं 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 ये तो हमारी गलती होगा कहना, वो तो डायरेक्ट भगवत पार्षद है, उनका जीवन में जो कुछ सुख दुख हम देखते हैं उसको अगर हम सुख दुख करके माने ये हमारी मूर्खता होगा। ये तो सब भगवान के लिए करते हैं, ऐसे थोड़ी हम मानेंगे कि यहाँ आ गए इतने साल रहे कि वो यहाँ के हो गए। नहीं नहीं, हम अगर आते हैं पंजाब आ गए हम थोड़ी बोलते पंजाब आ कितने भूल गए। नहीं नहीं, वो तो यहाँ के आए दो चार दिन के। हाँ तो ऐसे ही है, वो वहाँ के है गोलक वृंदावन के, यहाँ के नहीं माना जाए ना। तो उन्होंने जब उनका जन्म हुआ श्री जी बिछे गए और उनके परिकरों के साथ ही हुआ, उनके चाचा ताऊ दोनों तो भगवत पार्षद थे ही, सनातन जी रूप जी ताऊ चाचा दोनों ही साक्षात इतने उनके महिमा है कि साक्षात महाप्रभु जो टू इन वन है, राधा कृष्ण दोनों है, जुगल विग्रह है। उन्होंने जब पुरी से वृंदावन एक बार आना चाह रहे थे कि वृंदावन आना, और पहले से कई बार निकले थे लेकिन माँ के आदेश में वो पुरी चले गए। और जब वृंदावन आने के लिए महाप्रभु एक बार जिगर के मुझे जाना है जाना है, कई लोग उनको रोके और मत जाओ, लेकिन फिर भी बोले ना एक बार तो मुझे वृंदावन जाना है वृंदावन। तो महाप्रभु ठीक है आपको कौन रोकेगा जाइए। जब महाप्रभु पुरी से वृंदावन के लिए निकले तो बोले हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। कई कितने लोग उनके साथ आए और रास्ता में जुड़ते गए लोग। और भगवान ने उड़ीसा से चलते चलते जब बंगाल पहुंचे, तभी जमाने तो ये रूट नहीं था, वही था बंगाल बिहार होकर के आना पड़ता था रूट। आज भी उत्कल एक्सप्रेस अगला जो रूट में आता है वही रूट में आते थे। तो वही रूट में जब आए बंगाल पहुंचने के बाद मुड़ना चाहता बिहार की ओर, लेकिन भगवान ने पता नहीं कौन ऐसा महाशक्ति था जो साक्षात परमेश्वर भगवान को भी खींच लिया, वो अपने रास्ता भूल गए। यस, जो उनके रास्ता माना था रास्ता भूल गए, दूसरे रास्ता पकड़ लिए, वो सीधा रामकली की तरफ ले गया। अरे यहाँ रास्ता है नहीं, इतना 100 किलोमीटर आगे क्यों चले गए? यहाँ से रास्ता कट रहा था वृंदावन को आना था, लेकिन वो वहां चले गए, सैकड़ों किलोमीटर आगे चले गए। भगवान की भूल थोड़ी हो सकता, वो सर्वज्ञ शिरोमणि है, उनको क्या पता नहीं है कहां से रूट है कहां लेफ्ट लेना है कहां क्या करना, सब पता था उनको। लेकिन प्रेम के पाले, हाँ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, उनको भी अपना गति नीति से बदलने देखना पड़ता है प्रेम के बस होकर। यहाँ दो महाभक्त ऐसे थे, श्री सनातन पाद गोस्वामी, उनका नाम तो भी सनातन था ही नहीं, वो तो संतोष और अमर घर का नाम था उनका। तो लेकिन जब उन्होंने राज कर्मचारी बने, राजा ने उनको जबरदस्ती अपॉइंटमेंट किया, बताओ अन्य कोई साधारण पोस्ट था नहीं उनका पोस्ट जो था, उन्होंने तो नौकरी करना नहीं चाहते थे, ब्राह्मण के बालक थे। पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने शास्त्र चिंतन और जीवों के कल्याण करने के लिए क्या इस प्रकार के ब्राह्मण वृत्ति करना चाहते थे, ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करते ना, तो इसलिए वो ब्राह्मण बालक थे संतोष देव और अमर देव, वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब संतोष देव अमर देव का उनके महिमा उनके योग्यता के बारे में थोड़ा सा एक घटना से उनको परिचय प्राप्त हुआ महाराज नवाब हुसैन शाह को, ओ बोला माई गॉड OMG, ऐसे अद्भुत विचक्षण पर्सनालिटी भी है जो बिना सुने बिना जाने बिना पहचान बिना देखे कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इमीडिएट शट आउट कर दिए। ये कितने बुद्धिमान है पता लगा, बोले ये तो यंग लड़के दोनों है, ब्राह्मण बालक है ना, नौकरी वाकरी हम लोग का आज जितने यंग लड़के हैं सारे एक बुद्धि वृत्ति शक्ति सब लगा कर नौकर बनना चाहते हैं somehow or other। लेकिन वो दोनों यंग पढ़े लिखे बालक somehow or other नौकरी नहीं करना चाहते थे, ये उनके टारगेट था। अब उन्होंने अपने मिशन पर कोई बिजनेस धंधा बनना नहीं करूंगा, हम तो ब्राह्मण वृत्ति करेंगे, पठन पाठन यजन याजन ये काम करेंगे, इससे हमको अगर नहीं मिला भीख मांग कर खा लेंगे तो रोटी में काम चलेगा, शरीर टेम्पररी है, कितने दिन चलेगा। प्रभुपाद जैसे कहते हैं यू हैव टू लिव यंग दैट मच टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इतना हमको आवश्यकता है शरीर मेंटेन कर ले भाई, शरीर तो ऐसे ही मरेगा, तुम्हारा कवाई भी रहेगा तो शरीर कुछ नहीं करने वाला, तो ये जानते थे, हमारे जैसे हुड़बक तो थे नहीं, तो इसलिए कोई नौकरी के चक्कर में नहीं थे, बोले कहाँ नौकरी के तलवाटा चाहे एप्लीकेशन भी नहीं करते थे। तो लेकिन ये परेशान था राज कर्मचारी, रो रहा था बेचारा, उनके दुख देख करके वो पूछा, बोले मुझे पता नहीं राजा मुझे क्यों तू मर्डर कर दिया, मुझे भगा दिया, पता नहीं क्या क्या। जस्ट उसके दुख देख करके सुने, बोले ऐसा कम हुआ था, सोल कर तुरंत बोले कोई बात नहीं अब जाओ ये काम करो ठीक हो जाओ। उन्हें समझ नहीं पा रहा था, राजा के इतने दिन की नौकरी किया था, सीनियर सेक्रेटरी था, उनको नहीं समझ में आना था राजा का मूड क्या, लेकिन ये बिना जाने पहचाने कुछ नहीं उनको बोल दिए डू दिस, उन्होंने किया। राजा हुसैन साहब ताज्जुब हो गए, बोला आपने किया, सच बताओ ना महाराज। मैं क्या बताऊं, मेरे बुद्धि तो काम नहीं कर रहा था, दो लड़के मुझे मिले, मेरे रोने धोना देख करके मुझे बोले आप लगते तो राजपुरुष है, क्या दुख है क्या ना, ऐसे ऐसे घटना ना, कोई बात नहीं दुख होता, ये करो हो जाए ना सही में ना, आप तो करके तो देखिए प्रेम बता, मैंने किया और सही में आप भी खुश हो गए, सब काम बन गया, मुझे भी नहीं पता था। बोला हुआ दे, ये दोनों कौन है भाई, कौन है भाई, ना जान ना पहचान कुछ नहीं, ना खाना नहीं, इसे इमीडिएट शट आउट कर दिए प्रॉब्लम, कौन है पता लगा। ये बोली अगर इतने उपस्थित बुद्धि जिसका हो सकता है, अगर वो राज कर्मचारी के रूप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, तो उनको गवर्नमेंट सर्विस के लिए उनको बुलाया गया, उन्होंने राइट आउट मना कर दी, बोले ना और कौन सा पोस्ट है, इसे कोई छोटा मोटा किराने पोस्ट नहीं है, ऑफिस में बैठ करके लैपटॉप मारे कुछ करे 8 घंटा 10 घंटा काम करे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ पोस्ट के लिए नहीं है। आजकल जो सबसे सुप्रीम पोस्ट मानते हैं IAS IPS में आई लगा करके जितने हाँ आई मतलब अहम, जिसमें मूर्खता जोड़ा रहता है वही IE IA IF जैसे IP सब आई में जुट करके महामूर्ख बनाने वाले जैसे पोस्ट हैं तो वो तो कुछ भी नहीं है, तो एक ऑफिसर, उनको जो पोस्ट के लिए राजा बुला रहा था वो था दी प्राइम मिनिस्टर एंड दी फाइनेंस मिनिस्टर, ये दो पोस्ट के लिए उनको बुला रहा था। बताओ मिनिस्टर तो आजकल से इलेक्शन लड़ते लड़ते बाल उतर जाए तब भी ना हो पाए लेकिन नो इलेक्शन, कुछ भी करना चाहिए नहीं चाहिए, नो सिलेक्शन ऑल्सो, उनको तो पुष्ट देना ही था। राजा ने ठान लिया इन दोनों को तो मुझे करना ही है, ऐसे अद्भुत सामर्थ्य वाले हैं, उनको अगर मैं अपने राज दायित्व में रखूं तो फिर मेरा क्या होगा। सचमुच राजा था और जानता था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति मुझे आवश्यकता है, ऐसे लल्लू पंजू के इकट्ठा करके बैठा हूँ करके, ये सब क्या है। कई उनके राज कर्मचारी मेरे सिलेक्शन करके रखा था, बहुत IAS IPS में रखा था, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन वो चाहता था ऐसे व्यक्तित्व आ जाए। तो उनको कई बार अपने तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आया, बोला कोई इंटरव्यू नहीं, वाइवा नहीं, रिटर्न नहीं, नथिंग कुछ नहीं, जस्ट प्लीज कम, आई एम ऑफरिंग द पोस्ट डायरेक्टली, आपके वही पोस्ट भेजना। बोले नहीं सर नहीं चाहिए। बताओ अगर हम लोग होते, ओ माय गॉड लेकिन धन्य है ऐसे चरित्र था उनका, ऐसे व्यक्तित्व थे उन्होंने। राजा उनको सुपर गवर्नमेंट सर्विस के लिए, पूरे गवर्नमेंट सर्विस थोड़ी, ये गवर्नमेंट के बाप दी मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑल इन ऑल, है ना, नहीं सब कुछ। वो पोस्ट के लिए उनको बुलाया जा रहा था और जबरदस्ती प्लीज प्लीज करके राजा बुला रहा था, प्रत्याख्यान करते नहीं जाते थे। अंततः हुसैन शाह बदमाश था, वो बोला उनको तो छोड़ना नहीं, इसे कैंडिडेट फिर कहा मिले। उन्होंने बोला आप दोनों अगर नहीं आते, अगर नहीं स्वीकार करते पोस्ट को, तो खबरदार आप नहीं जानते मैं कितने बदमाश हूं, मैं आपके जितने ब्राह्मण कॉलोनी है सबको मरवा दूंगा, आग लगा दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा, जबरदस्ती से करूंगा सुख। तो बेचारे ब्राह्मणों को विपत्ति सोच करके उन्होंने विपत्ति भी स्वीकार कर ली, बोले ओके ओके नो प्रॉब्लम, विल एक्सेप्ट द पोस्ट। नहीं तो हम जब नहीं चाहते तो अब इतने बड़े विनाश करेंगे, इतने लोगों का हत्या कर डालेंगे, उनको विधर्म कर डालेंगे, नाश करेंगे, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही काम करना था, चले। उन्होंने स्वीकार किए पोस्ट, मैंने उनको बुला करके कोई नौकरी इंटरव्यू करके मुझे लग गया मेरा जब, ऐसा नहीं था, उनको लगाया गया। और इसी प्रकार से लगाया गया कि नहीं चाहते थे उनको तो जबरदस्ती करना, अगर आप पोस्ट में नहीं आएंगे तो हम ये कर डालेंगे ये धमकी दे ये तभी वो राजी हुए नेत्राजी। वो ला करके पूरे अंग बंग कलिंग तीन स्टेट का राजा था हुसैन शाह नवाब, उन्होंने आकर के इतने सम्मान दिया उनको, अंदर से तो हृदय में समझ रहा था कि कितने त्यागी वैरागी है, मैं इतने बड़े पोस्ट उनको दे रहा था, वो चाहते नहीं आना, व्हाट काइंड पर्सनालिटी दिया, वो भी ताज्जुब हो रहा था देख करके। वो उनके इतने सम्मान हृदय से किया, वो बुला करके कितने उनको बोला पेमेंट दूंगा क्या आपको, पेमेंट फंड, आपसे पेमेंट से मतलब ही नहीं, आपको इच्छा नहीं, तो उनको इतने सुविधा दिया, एक राजा का सुविधा, राजा ही तो था ही, एक राजा का फैसिलिटी दिया, ऐसे मकान, ऐसे हवेली, ऐसे पेमेंट, पेमेंट क्या बोले आप ही के सब है, आप फाइनेंस मिनिस्टर है राज, जो चाहे सब निकाल, पूरा राज खजाना आपका ही है, मेरे से कुछ बोलना नहीं, मेरे से परमिशन लेना जरूरत, ये बात दिया, ऐसे बड़े पोस्ट दिया, उनको उपाधि दिया साकर मलिक और दबीर खास, ये दोनों शब्द उर्दू में उसका अर्थ है एक अर्थमंत्री एक प्रधानमंत्री, ये दो पोस्ट दिया उनको, और पोस्ट के अनुरूप रहन सहन वेश पोशाक सब दिया, बोला ऐसे थोड़ी इतने बड़ी स्टेटस में इतने बड़ी पोस्ट में रहे, लेकिन इतने बड़े पद पदवी में रहते हुए भी हृदय उनका ऐसा था, तड़पन था, जिस हृदय के तड़पन के कारण सर्वसमर्थ परम ब्रह्म परमेश्वर भी आज भूल करके रास्ता खींचे गए सैकड़ों किलोमीटर यहां, कुछ और कारण नहीं था, वृंदावन का रास्ता था नहीं, वो गए भी नहीं वृंदावन, केवल उन दोनों को मिलने जा रहे थे प्रभु, और कुछ नहीं था, किसी को नहीं पता था, सब बोलते यहां क्यों चले, क्यों बोले भगवान चल रहे हैं, नृत्य कीर्तन करते हुए महाप्रभु वृंदावन के ओर चल रहे हैं, उनके पीछे इतने लोग जोड़ गए, इतने लोग कर महाप्रभु के इस नृत्य रूप को देख करके, जो देख रहा था रास्ता में गांव में बाजार में इधर जो देखा सो फंसा, और बैग स्टेप तो लेता ही नहीं था, वो भूल गया मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल में जाना चाहिए, बैग के साथ चल दिया, कोई खेती में जा रहा था खेती छोड़ के चल दिया, कोई दुकान जा रहा था दुकान छोड़कर चल दिया, कोई दुकान से आ रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था, एक नजर पड़ा सारे गोल हो गया सब खत्म, सीधा उनके पीछे चला, अरे भूल गया भाई दिन में कोई खाऊंगा रहूंगा क्या कर, भूल गए। ऐसे वर्णन आता है शास्त्र में कि महाप्रभु जब वृंदावन जो इसी समय आ रहे थे राम के लिए तो जा रहे थे, इतने लोग उनके साथ चल रहे थे। एक घटना उसका उदाहरण देते हैं, काउंटिंग तो नहीं किए, काउंटिंग में बताया अर्बुद अर्बुद ये संख्या आया, अर्बुद को जानते हैं कितना होता है डिजिटल आप बता नहीं सकते अर्बुद कितने होते, वो अर्बुद अर्बुद लोग चल रहे थे इसे वर्णन आया है, लेकिन एक घटना बताया गया, कभी कभी महाप्रभु अच्छा ये धाम करके उठ करके मिट्टी से थोड़े प्रणाम करके थोड़े धूल लेकर के सर में लगा देते थे, भगवान इतना किए जैसे कभी कभी करते ना वृंदावन जाते हैं थोड़ा धूल ला करके सर में लगा दिए, तो भगवान जब ऐसा किए तो उनके पीछे लोग देखा अच्छा निमाई गौरांग महाप्रभु ऐसा किए, तो सभी ने तो कुछ समय के बाद यहाँ के तालाब खोदना नहीं पड़ता था, तालाब बन जाता था वो धूल उठा करके सर में लगाया भाई तालाब हो गया, भाई कितने लोग होंगे अनुमान कीजिए, हाथ में धूल के कोई कोदाल के कोई बुलडोजर क्या जेसीबी कोई बिना तालाब बन जाता था हा? तो आप जस्ट इमेजिन कितने क्वांटिटी के लोग होंगे, ये घटना होता था। और जब राम के लिए पहुंचे तभी पूरे तीनों स्टेट का दी कैपिटल सिटी था गौड़, गौड़ देश के राजा थे इसलिए गौड़ी कहते, गौड़ था वो, आज भी वो डिस्ट्रिक्ट है कोई जानते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यस, मालदा। तो गंगा जी के धार पर है, बहुत चुने हुए, बहुत फर्स्ट क्लास जगह है। तो वहाँ पे उनका राजधानी था। तो वहीं पे जब महाप्रभु एंड पार्टी इतने से संख्या में लोग पहुँचे, क्योंकि वो राजा था, राजा कैपिटल सिटी में। आजकल तो अभी जमाने में इतनी लोकसंख्या भी थे नहीं, आजकल इतने लोकसंख्या है, लेकिन फिर भी केवल 50-100 आदमी एक नाराबाजी करके दिल्ली में रोड में निकल जाए, पूरे पुलिस कलेक्टर आए, सब सब ढूंढे, क्या बात है ना, सबका अंदर। और उन्होंने दी कैपिटल सिटी में एंट्री किए, अरबों संख्या में लोग चल रहे थे उनके पीछे। तो जितने सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे, जितने ऐसे होंगे, वो तो कितने दबाव रहे, किस लिए, क्या है ये, कोई आंदोलन है ये, कोई, हम लोग तो इकट्ठा होते हैं कि महंगा भत्ता बढ़ाओ, ये करो, इसके लिए करते हैं कि क्या है, क्या मांग है, कोई स्ट्राइक, क्या कोई आंदोलन, कुछ नहीं था, वो तो कीर्तन करके जा रहे थे, बदमाश समझ में नहीं आ रहा था वो बोलते क्या है, क्या नाराबाजी करते, हम समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग तो ऐसे करते, हाथ बोलते सब जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, दोनों हाथ उठा देते। आजकल के आंदोलन और उसके आंदोलन में सब सिंगल हैंडेड या डबल हैंडेड थे, यही होता ना, मुर्दाबाद की जिंदाबाद एक हाथ में करते हैं, लेकिन वो सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके, दोनों हाथ ऊपर उठा करके और भगवान के नाम लेते थे, रोते थे। इस प्रकार के दृश्य देख करके उनके जो सैनिक थे, उनके जो इन्फॉर्म जो CID से ऑफिसर थे, वो भी समझ नहीं पा रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, ये क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और रिपोर्ट पहुंच रहा था राजा के पास, असंख्य लोग आ गए, ऐसे ऐसे आ गए, राजा भी घबरा गया। उन्होंने भी गुप्त सिविल ड्रेस में गया भूषण शाह देखने के लिए, वहां रियली उन्होंने भी गया सिविल ड्रेस में। अब जा करके देखा एक बार, वो भी OMG में आया। हाँ, आ करके उसी रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, शाम के समय था, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, जो जो उनके हाई क्लास कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग बुला, किस बारे में, नहीं ये जो इतने भरी संख्या में इतने बड़े ग्रुप एंट्री किए, क्या है उनका लक्ष्य, क्या मकसद है, क्या आप लोग का क्या विचार है। तो ये सब छत्री थे, और एक हिंदू थे, मुसलमान राजा था, वो जानते थे ये तो बेचारे भक्तगण हैं, और राजा को अगर गुस्सा का कुछ मार पीट बताता नहीं, क्या क्या करेगा, एक्शन लेगा, कुछ ना करेगा। तो उन्होंने बोला, बोला नहीं नवाब जी, ये काफिर है हिंदू, और तो एक नाच कूद करके आ रहे हैं, उनके हिंदू समाज में ऐसे होता है, कभी कीर्तन वर्तन करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई खराब नहीं, आप भूलिए ऐसे। तो उसको विश्वास नहीं किया राजा ने, क्योंकि खुद जाकर देखा था ना, खुद जाकर देखा था, बोला यू गेट आउट, आई डोंट बिलीव, हाँ वैसे बोल रहे कुछ नहीं, मैं इसे मान जाऊंगा। तो मीटिंग कैंसिल कर दिया, बोला आप लोग मुझे इसी गुमराह कर रहे, सारे को विदा करके इमरजेंसी प्राइवेट कॉल किया सनातन पाद को, बोला उनको बुलाए, मैं जानता हूँ वही बता सकते हैं, बाकी आपके ऊपर मेरा भरोसा नहीं। तो सनातन को सब आए, अकेले प्राइवेट डे आपने उन्होंने बुलाया, वो बिल्कुल डरा हुआ था, बोला अब आपको पता है, और राजा को पता था कि मुझे जिसे पता है वो घर बैठे कर उससे ज्यादा खबर लिया होगा, क्योंकि इतने विचक्षण मति मति थे सनातन पाद, वो उनका तो इतने बुद्धि चलता था, और सारे डिटेल लिए होंगे, बोले मैं खुद जाया, वो भी गया होगा कि नहीं, लेकिन बैठे बैठे वो खबर लिया होगा पक्का, उनका आइडिया तो फेल नहीं होगा, इतने जानता था, भरोसा था उसके ऊपर, इसलिए उनको बुला करके प्राइवेट अपने चैम्बर में पूछा, साकर मलिक जी कृपा करके, आपको तो पता ही होगा, जानता हूँ, बोले प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू, क्या है ये कैसे। सनातन जी के बुद्धि तो देखिए, राजमंत्री सनातन अत्यंत बुद्धिमान, ऐसे बुद्धिमान थे, तुरंत बोले, राजा इसको डरे मरे इसे पूछ रहा है कि आपको मतामत की भी और ओपिनियन, ये इतने बड़ी संख्या में लोग घुस गए स्टेट में। तो सनातन जी ये भी पता लगा दिए थे कि छिप करके वो भी गया था देखने के लिए, उनको भी पता लगे, इतने भी चेक, बोले सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहा है, राजा को ये पता नहीं था कि मेरे ऊपर ही थोक देगा। बोला आप क्या सोच रहे, मुझे पूछ रहे हैं मेरा मतामत, मैं तो आपका जाना, तो आपका मतामत क्या है, आप तो स्वयं भी गए थे ना छिप करके, देखे भी है ना, परिस्थिति देख रहा है ना, आपका मतामत क्या है। साकर मलिक जी सच बात अपने से अगर सही में मेरे मतामत जानना चाहते हैं, मैं तो बोल रहा हूं कि वो साक्षात अल्लाह है। मैं तो बोले क्यों क्यों आप एक्सेप्ट करते हैं अल्लाह कर? बोले मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूं, बोले मैं जब से भी राजा पोस्ट बनकर के बैठा हूं, नवाब बनकर के, कई बार मैंने मीटिंग बुलाया पब्लिक मीटिंग एड्रेस करने के लिए, और मीटिंग बुलाने के लिए 6 महीना पहले से मैंने डेट डिसाइड करता हूँ, एडवर्टाइज करता हूँ, और सारे लोगों की डेंगुरा तभी जमाने जो बेचते हैं, सारे प्रकार सबको विज्ञापन करवाता हूँ कि मीटिंग है, राजा साहेब नवाब साहेब एड्रेस करेंगे, और लोगों को आने जाने की व्यवस्था करता हूँ। जब भी आजकल इसे ट्रक लोड करके लोगों को नेता लोगों को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, तो इसे तभी जमाना ट्रक नहीं था, जो व्यवस्था था बोले उनके आने का रहने का खाने का और बख्शिश देने के लिए, कुछ खर्चा बने नहीं देने से लोग आएंगे नहीं, वो सारे प्रकार के व्यवस्था करता हूँ, थोड़ा पब्लिक इकट्ठा तो हो जाए कि कभी पब्लिसिटी के लिए कोई फोटो में आएगा तो इतने लोग इकट्ठा हुए थे। तो 6 महीना से हर प्रकार से राजकोष से खर्चा करके सारे लगा करके सारे कर्मचारी 6-6 महीना लगते हैं लोगों को बुला करके, आप कितने पैसा दे देंगे, खर्चा दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास अटैच बाथरूम गेस्ट हाउस मिलेगा, खाना चकाचक और भी बख्शिश सब मिलेगा, प्लीज आओ एक दिन के लिए मीटिंग के लिए आ जाओ सर। लेकिन बड़े 6 महीना से प्रयास करते करते अगर 10,000 लोग इकट्ठा कर लिया ना 3 स्टेट से, तो सुपर अचीवमेंट मानता था इतने व्यवस्था करके। और भी वो लोग आते थे, इतना गालियां बकते थे मुझे, बदमाश, खाने पिएंगे पैसा मिलेंगे और गालियां बकते थे मेरे लिए, ऐसे करके जाते थे, कोई रहते नहीं थे, आकर घूम फिर के फिर चले जाते थे, बैठते नहीं थे मीटिंग में, कोई आते भी थे हम बुलाते हैं रथ यात्रा के लिए पैसा देकर बुलाते हैं, वो आके मार्केटिंग करके चले जाते हैं, तो आकर भी इसे करते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, ये एक सन्यासी है जो भी है, उन्होंने ना तो एडवर्टाइज किया, ना किसी को व्यवस्था, ना किसी को बुलाया, कुछ किया, वो अकेले खुद ही देखता नहीं पीछे, वो पीछे देखता नहीं, किसी को बुलाता नहीं, खुद रोते रोते नाचते नाचते जा रहा है, इतने पब्लिक उनके पीछे, इतने पब्लिक उनके पीछे, और पब्लिक जो जा रहे हैं, पब्लिक कभी सोच भी नहीं रहा है कि भाई रात हो जाऊंगा, मैं सोऊंगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ, नथिंग, कोई सोच विचार नहीं है। अबाल वृद्ध वनिता, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बूढ़ी तक चल पड़ते हैं पीछे। मैं तो देख करके तजुबा हो गया, पानी के अंदर भी लोग खड़े खड़े रात बिता रहे हैं, कोई पेड़ के ऊपर, कोई पानी के अंदर, कोई खेती के अंदर, कोई कहां कांटे मांटे, कोई सोचता नहीं, शरीर की शुद्धि किसका नहीं है, शरीर शुद्धि नहीं है उनके पीछे, इस प्रकार लोग भाग रहे। और संख्या में क्या बताऊं, मैं तो गिनती नहीं कर सकता, इतने भारी संख्या में लोग ऐसे पड़े हैं लोग, और वो कुछ भी नहीं दे रहा है, उनकी बातें भी नहीं कर रहा उनसे ढंग से, खाने पीने के रहने की व्यवस्था तो छोड़ो, वो खुद का ही नहीं, उनका क्या करेगा, लेकिन लोग इतने पब्लिक इकट्ठा, तो वो तो साक्षात खुदा है। ये तो मैं 100% मेरा ओपिनियन बताता हूँ, खुदा के अलावा कुछ हो नहीं सकता। सनातन जी सुन करके मुस्कुरा कर बोले, यस यू आर राइट, वो खुदा है, खुदा ना खुदा है। अब क्या सोच, उन्हीं के कृपा से तो तुझे पोस्ट पोजिशन मिला है, अगर तो कुछ गड़बड़ी किया, और जिंदा खुदा है, अगर तो कुछ मन में कुछ सोच रहा है तो हो, समझ लो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आप ही खुद देख रहे, खुदा तो है, मैं ही बोलता हूं, इन्हीं के मर्सी से तू पोस्ट मन, इमीडिएट, और कुछ पूछा नहीं, डिस्कशन नहीं किया, अपने सेक्रेटरी बुलाया, इमीडिएट डिस्कशन दिया, बोला ओ जो आए हैं उनके ग्रुप, उनके लिए किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, कोई उनको देखो ही मत, जो करना चाहे जा रहे, जो करना चाहे करने दो, फ्री छूट उनके लिए, ऐलान कर दिया, वो पास कर दिया हाई इमीडिएट, राज आदेश कर दिया। वो आदेश जब गया टाइप होने के लिए, वो जो मुसलमान थे उनसे बोले, राजा पागल हो गया, इतने खतरनाक बदमाश राजा है, इतने लड़ाई करके लोगों को विधर्मी कर रहा है, इतने कर रहा है, ये हो क्या गया, ये तो बिल्कुल हिंदू बाबा जी है और हरिनाम करते हुए नाश्ते गास्ते आ रहे हैं, पक्का मुस्लिम राजा है। वो उनको वैसे आदेश कर दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उनको फ्री जो के धर्मशाला रहने के, फ्री नो चार्जेस, और भी सुविधा प्रदान करो, असुविधा तो कुछ हो नहीं सकता। कैसे कर दिया, कैसे कर दिया पता नहीं, क्योंकि सामने खड़े थे महामंत्री, एक बातें नहीं कि ऐसे प्रभावित किए कि राजा का बुद्धि गुम हो गया। वो ऐसे कुछ बोले नहीं कि प्लीज हेल्प हिम, थोड़ा ऐसे कर दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं किए, ऐसे डांट दिए कि अपने आप भी सारा डर के मारे कर दिया, ऐसे ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन फिर भी महामंत्री सनातन जानते थे कि बदमाश है, राखे से हो तो अभी तो मैं डरा दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन पता नहीं बाद में फिर कुछ उलट सकता है, किसी भी समय बदल सकता है। तो इसलिए उसी रात भगवान से मिलना चाहते, अभी तक नहीं मिले थे, दी फास्ट टाइम उनके परिवार भगवान से मिलना चाह रहे थे, जबकि हृदय से नाता कई दिन से था। कई बार ऐसे वर्णन आता है कि रूप जी सनातन जी चिट्ठी लिखे थे, अरे अनुपम भी वही सर्विस कर रहे थे, वो भी सेक्रेटरी थे, प्राइम मिनिस्टर तो सनातन जी थे और फाइनेंस मिनिस्टर उनके छोटे भाई थे, और उनके छोटे भाई जो अनुपम थे वो भी चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी कौन सा पोस्ट आप सब जानते होंगे, है ना, नहीं हम तो कोई सपने में सोचे नहीं, लेकिन फिर भी ये वो पोस्ट, और उनके लड़के थे छोटे, अभी अभी साल भर का भी हुए नहीं होंगे आसपास, मतलब फोर व्हीलर थे जी, तो इसी स्थिति छोटे बालक थे, इस स्थिति में क्वार्टर तो सब उनका रॉयल क्वार्टर था, क्वार्टर क्या था, हवेली था, राजभवन ही था उन लोग, फिर बस तीनों भाई वहीं रहते थे। तो सनातन जी गए रात में जा करके अपने नाइट डिनर अगर लिए होंगे जो कि करके, वो बुलाए भाई की और भाई को, दोनों भाई को बुला कर बोले उनसे मिलना चाहते, क्योंकि जानते थे कि साक्षात परमेश्वर है, अभी देखे नहीं थे, इतना उन्होंने आइडिया लगा लेते, कितने बुद्धिमान थे, क्योंकि उसके पहले कई बार पत्र लिखे थे, पोस्टल डिपार्टमेंट था नहीं कि ईमेल के आईडी, ये जो क्या जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ था नहीं कंटैक्ट करने के लिए, तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजते थे, पेन पेपर भी नहीं था, भोज पत्र में लिखते थे रूप सनातन मंत्री द्वय, लिख करके एक व्यक्ति को भेजते थे, युगो उनको ओडिशा जाओ, पुरी में जा करके उनको हैंड ओवर करके लेटर आओ, और कोई आंसर देंगे तो लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता था, 15-20 दिन लगेगा चल के जाए, फिर 15-20 दिन लगेगा, एक महीना लगता था आने जाने में, लेकिन लेटर का जवाब ही नहीं आता था, एक महीना तक आदमी को खुराक पोसाव देकर भेजते थे, और कई पत्र लिखे महाप्रभु कुछ आंसर ही नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अधर्ज नहीं होते थे, बोलते थे हम अभी आंसर पाने के लिए योग्य तो है ही नहीं, फिर भी लिखते थे। कई पत्रन के बाद में लिखने के बाद फाइनली महाप्रभु ने एक रिप्लाई दिए, एक रिप्लाई लेटर भेजे, और रिप्लाई लेटर में वन सेंटेंस लिखा हुआ था, उन्होंने तो कितने क्या क्या लिखकर भेजते थे दोनों भाई, महाप्रभु पढ़ते होंगे जरूर, उनको क्या, वो तो बिना पढ़े ही जानते थे, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस एक बार रिप्लाई दिए, और रिप्लाई के पाकर इतने खुश हो गए कि एटलीस्ट ही रिप्लाइड। रिप्लाई में यही लिखे थे एक सेंटेंस, वो ही समझ पाएंगे, हम लोग उठ वक्त समझ ही नहीं पाएंगे, संस्कृत में लिखे थे एक दो लाइन कि परव्यसनी नारी का अर्थ है जैसे कोई स्त्री का शादी हो चुका है, और शादी होने के बाद भी उनके पति हैं, उनके सास ससुर सब कुछ है, लेकिन उनके मन और कोई दूसरे उपपत्ति में फंसा हुआ, उनको परव्यसनी नारी कहा जाता है, क्योंकि अपने विवाहित पति के अलावा और कोई उनके उपपति है, और जिनको पाने के लिए वो तड़पते रहती है। तो वो क्या करेगी, एक बार लिखी जैसे परव्यसनी नारी गृहकर्म प्रवीणा गृहकर्मेषु, बोले घर का काम ऐसे करेगी कि ना तो उनके पति, उनके ननंद, उनके सास, ना ससुर, उनको गंध वासना ही पता चलेगा कि वो इज थिंकिंग समथिंग एल्स, कोई गड़बड़ी काम में करता है, कोई नहीं। इतने परफेक्टली हाउस होल्ड एक्टिविटीज को हैंडल करेगा, ऐसे करेगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। सो पतिव्रता इतनी अच्छी है, ऐसे मानेंगे। लेकिन जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल ऐसे काम करती रहेगी, लेकिन मन में बिल्कुल तड़पन विचार और किसी के लिए, लेकिन काम इसके लिए इतनी लगा करके, बस यही दो नाम लिखे थे। और वो दोनों समझ गए कि प्रभु यही चाहते हैं कि हम राजा हुसैन शाह का, ये हमारे विवाहित पति है, लेकिन असली पति तो हमारे प्रभु हैं, उनके हम चाहते हैं, उनको हम चाहते हैं। अभी देखे ही नहीं, मिले नहीं, फोटो भी नहीं देखे उनके, लेकिन वो हमको जबरदस्ती अपना विवाहित पति करके बैठा है, हमारे पति बन करके। तो उस पति के साथ ऐसे व्यवहार करे, ऐसे उनके साथ व्यवहारिक कर्म करे ताकि उनको बिल्कुल पता भी ना चले कि दे डोंट वांट मी। इतने ऑडियंस इतने हमको माने, और अंदर से 100% तो और किसी का अपॉर्चुनिटी मिलती भाग जाए। इस प्रकार के महाप्रभु के ये इशारा मार रिप्लाई था, इस प्रकार के उस रिप्लाई को पा करते और सतर्क हो गए। अब तीनों भाई डिसाइड किए कि अभी चलते हैं मिलने के लिए सनातन सरस्वती की, एक बार मिल करके उनको एक दर्शन भी करेंगे, एक बार उनको सूचना भी देंगे कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए कैसे जाएं, तो मंत्री दुनिया राज मंत्री सभी जानते हैं। तो आधी रात में निकले, डेड नाइट, और ड्रेस भी चेंज किए, रात की सिविल ड्रेस में भी, वो भी नाइट ड्रेस, पता नहीं अमावस्या के ड्रेस काला काला पहने होंगे, जो पहने होंगे कुछ पहने होंगे, ऐसी ड्रेस पहने। तीनों भाई निकले, और छोटे भाई अनुपम थे, वो जो छोटे लड़का था वो भी रोया, वो भी रात को सोया नहीं था। भाई वो भाई उन्हीं के है ना, उनको भी तो पता है उन्हीं के लोग, वो भी रात को बोला कि मैं भी चलूंगा, पता नहीं छोटे फोर व्हीलर तो फिर भी उनको ले गए, उनके पापा उनको गोद में ले गए होंगे, उनको ले चले, इसे वर्णन आता है, ले चले। और बिल्कुल निर्जन सुनसान आधी रात में, और बाकी तो सब सोए हैं नाइट में कोई तो, और महाप्रभु के साथ में जो लोग आए थे, क्योंकि दिन भर महाप्रभु खूब नचाए थे, उनको खाना पीना तो मिलता ही नहीं कुछ, कोई पानी पिए, कोई मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन खूब नाचे खूब गाए, इतने टायर्ड थे, कोई पानी के अंदर खड़े खड़े सोया, कोई पेड़ को पकड़ कर सोया, कोई बैठे सोया, कोई सोते सोया, किस प्रकार सब सोए हुए जहाँ था। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आज आधी रात बीत चुका है, सो नहीं रहे, एक दीप जल रहा है अपने कुटिया के अंदर, महाप्रभु जागृत बैठे हुए हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। इतने नाचे इतने नचाए, बिल्कुल क्रांत शांत हो चुके हैं, नींद तो आना ही चाहिए, लेकिन नींद नहीं ले रहे हैं, विश्राम नहीं ले रहे हैं, अबे क्या कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए वेट करके बैठे हैं। जैसे आप लोग का काली फाइनल एग्जाम है, नींद कैसे होगा, 2 बजे तक तो किताब के साथ रहना पड़ेगा। तो महाप्रभु सो नहीं रहे, और महाप्रभु सो नहीं रहे, उनके घर में दीप शिखा जल रहा है, तो उनके दो जो अति घनिष्ठ सेवक है, उनके पार्षद है, वो भी कैसे सोए। वो दोनों कौन थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, वो दोनों भी नहीं सो रहे थे। बोले क्या, अंततः नित्यानंद प्रभु जाकर के पूछे, बोले प्रभु इतनी रात हो चुका, सो लेट नाइट, विश्राम तो कीजिए। बोले नहीं, अब बोले तो कुछ नहीं, उनके एंगेजमेंट दे दिए उनको। बोले मैं इसलिए अपेक्षा करूँ, मैं अपेक्षा करूँ, कोई आने वाला है, अभी कोई आएगा ना, यस कोई आने वाला है, आप देखो, वो भी जो आएंगे फर्स्ट टाइमर है, ओ पहले कोई नहीं आए, न्यू डिवोटी तो है, लेकिन अभी न्यू आएंगे, तो आप दोनों जाओ उनको लेकर के आना, उनको पता नहीं मैं कहाँ हूँ, इतने भीड़ के अंदर मैं कहाँ हूँ, किस प्रकार हूँ मुझे पता नहीं, यू गो देयर, और बिल्कुल रोड के ऊपर जाओ, रोड के ऊपर देखना, और 3 ऐसे व्यक्ति आते होंगे, उनको गाइड करके यहाँ तक लेकर के आना। तो दोनों गए, कौन कौन गए, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद। नित्यानंद पर हरिदास ठाकुर कौन कौन है जानते हैं आप? उनके परिचय पता है? नित्यानंद प्रभु साक्षात, अरे आदि गुरु है, जो गुरु तत्व है ना ओरिजिनल वही है। और हरिदास ठाकुर कौन है? नाम है श्री नामाचार्य। तो देखिए भगवान अगर किसी जीव को अपना पास बुलाते हैं, व्हाट इज द एजेंसी भाई मीडिया, क्या है? गुरु एंड नाम। ये दोनों के बिना हम जा नहीं सकते, भगवान ही व्यवस्था किए हैं। नहीं तो संसार में तो तीन ही तत्व प्रसिद्ध है, एक ईश्वर, एक माया, एक जीव, बाकी तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ये गुरु तत्व तो भगवान ने सबॉर्डिनेट क्रिएट किए हमारा हाल देख करके, गुरु और नाम। तो उन्होंने नाम तत्व, गुरु तत्व, भगवत, भगवान ने एडिशन दिए अपने से, भगवत तत्व के अंतर्गत है दोनों। वो दोनों ने भगवान ने उन्हें दिए, वो दोनों को भेजे, वो दोनों श्री गुरु और श्री नाम जीव को लेकर के प्रभु के पास जाता है, जाकर के मिलाता है उन्हीं के साधन से। और मिलते हैं, प्रथम बार दर्शन होता है, और प्रथम बार जो दर्शन, जो मिलन का जो वर्णन है, उसको वर्णन जो किए वो किस प्रकार किए, उस वर्णन में ऐसे वर्णना है कि महाप्रभु साक्षात भगवान कहते हैं कि सनातन रूप रहने दो, आपके दैन्यता को देख करके मेरे छाती फट जाता है, टू मच, स्टॉप इट। किस प्रकार के जीव और ईश्वर का मिलन होना चाहिए। हम जब आते हैं राधिका राधिका सुमन को देखने के लिए कृष्ण बलराम को, क्या भाव होना चाहिए? ऐसे मर्मंतुत मिलन होता है। भगवान उनको बोलते हैं कि प्लीज स्टॉप, आई कांट टॉलरेट इट, मैं इसको संभाल नहीं सकता, इतने धन्य, इतने व्याकुलता। इस प्रकार के भगवान के साथ मिलन होता है। तो उस रूप को वो दोनों तो एक्टिव में बातचीत के जो भी कुछ हुआ, भगवान ने उन दोनों का वहीं पे नाम नेम की भिंग सेरेमनी हो गया, वही डेड नाइट में वही कुछ फॉर्मेलिटीज, नथिंग देन एंड देयर। आप दोनों तो मेरे नित्य सेवक है, आप सनातन हो, रूप है अनुपम की भी, तीनों का नामकरण वही कर दिए। तो उसी समय में वो छोटे शिशु अवस्था में जिनके स्थिति है, उन्होंने प्रथम बार, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम इन हिज लाइफ, ये भगवान के दर्शन किए। पहले तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन किए तो थे, बाद में कई बार करेंगे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु के दर्शन दी फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम उसी बार की इसी अवस्था में, अपने पितृव्यों के साथ अंडर हिज देयर गाइडेंस, वैसे महाप्रभु के सानिध्य उनको दर्शन मात्र किए, बाकी तो बोलने के बातचीत करने का तो समर्थ ही नहीं था उनका, लेकिन भगवत विग्रह को दर्शन किए थे। और उस दर्शन का ये इफेक्ट ये निकला कि बाद में महाप्रभु तो गए ना, छोटे थे वो, तो उसके बाद में रूप गोस्वामी रिजाइन करते हैं, चले जाते हैं रूप, उनके क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके रेजिग्नेशन कौन किसको देंगे? प्राइम मिनिस्टर को देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन किसको देगा? उनका अथॉरिटी तो राजा है, वो बोले तेरा रेजिग्नेशन तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा रेजिग्नेशन तो मैं खुद नहीं कर सकता, अब मैं उसको दूंगा वो तो लगा ही नहीं। तो इसलिए रूप गोस्वामी एंड उनके छोटे भाई अनुपम दोनों तो नौकरी छोड़ के चले गए अपने समझ में, लेकिन सनातन छोड़ के जा नहीं सकते थे, उसकी बड़ी लंबी कथा है। तो जो भी हो, लेकिन मेरा कहना क्या है कि जीव गोस्वामी फर्स्ट टाइम इस अवस्था में वहां महाप्रभु के दर्शन किए थे, और उसके बाद में बहुत बड़े चेंजेस हो गया, दोनों ताता चाऊ और पिता तीनों घर छोड़ के चले गए उनकी छोटी शिशु अवस्था में। घर में उनके पत्नियां होंगे, जीव गोस्वामी अकेले रह गए, अभी उनका पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ और पढ़े, फिर पढ़े लिखे, लेकिन वो तीनों पापा भी गए, बड़ापा क्या बोलते हैं वो, ता बोलते हैं ना, बड़ी पापा हाँ जो बोलते हैं, वो भी गए और चाचा जी भी गए, सब गए छोड़। अब किस लिए गए? घर में तो बिल्कुल हल्ला गुल्ला मच गया होगा। इसी स्थिति में उन्होंने पढ़ाई लिखाई किए, पूरे परिवार में एकमात्र औलाद, एकमात्र इकलौती संतान, सारों का केंद्र वही थे जीव। लेकिन वो भी इस प्रकार पढ़ लिख करके, अब जो उनका ग्रेजुएशन तक नहीं गए, 12 किए कंप्लीट, ये कंप्लीट करके, तभी 12 कंप्लीट जब कर रहे थे पढ़ाई कम से, तो उनके इतने इस प्रकार था, तो उनको घर में भी विग्रह पूजा कर रहे थे। ये आप ये वर्णन है श्री जीव गोस्वामी के बाल्यकाल से जो पूजित विग्रह थे, वो थे कौन जानते हैं? कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम उनके उपास्य देव है, आपके कृष्ण बलराम है। तो कृष्ण बलराम विग्रह को उन्होंने उपासना करते थे बचपन से, स्कूल में पढ़ते थे। और आज स्कूल फाइनल पूरा करने के बाद में, और मम्मी डैडी तो थे नहीं, मम्मी एंड जो और मम्मी जो थे बड़ी छोटी जो भी थे सारे मम्मियों को बोले कि अब मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है, ले जाओ अब नवदीप पाए, क्योंकि महाप्रभु तो पूरी गए, पूरी से प्रकट हुए तो आए नहीं, तो महाप्रभु के दर्शन तो कर नहीं पाए उन्होंने, तो नवदीप पाए उनके अभी हाई स्कूल के बाद यंग बिल्कुल थे, बिल्कुल नई जवानी की अवस्था में नवदीप आए। नवदीप में आकर के महाप्रभु की व्याकुलता से महाप्रभु को तो दर्शन हुआ नहीं, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभुपाद का दर्शन हुआ। जोगपीठ में नित्यानंद प्रभु थे, श्री नित्यानंद प्रभुपाद के दर्शन किए, नित्यानंद प्रभु उनको लेकर के सची माता से मिलाए, विष्णुप्रिया देवी से मिलाए, और उनको साथ में लेकर के दी फर्स्ट टाइम नवदीप मंडल की परिक्रमा करवाए। ये जिस परिक्रमा हम अब करते हैं ना, ये परिक्रमा के दी फाउंडर आचार्य है नित्यानंद प्रभुपाद, उनके साथ परिक्रमा करने वाले भक्त में एक ही भक्त था, वन पर्सन परिक्रमा, एक पार्टी लीडर और एक फॉलोअर, हाँ ये परिक्रमा हुआ था सिंगल सिंगल। और जीव गोस्वामी को साथ में लेकर के पर्सनली केयर लेकर के, पर्सनल अपने गाइडेंस दे करके डायरेक्ट श्री बलराम से नित्यानंद प्रभु लेके गए परिक्रमा, ये रिकॉर्ड है। तो उसको परिक्रमा कराए और उनको रखा है कई सभी सभी बड़े बड़ों के गौर पार्षद का आशीर्वाद दिला करके बोले देखो जीव, आपके लिए प्रभु ने वृंदावन दिया है, आपके परिवार के लिए वृंदावन दिया है, आप और किसी के लिए नहीं, ये वृंदावन इज रिजर्व फॉर योर फैमिली, तो आपके परिवार के वृंदावन वासी है, आप जाओ वृंदावन, यहाँ रहना नहीं, आप कुछ नहीं, नहीं मैं जानता हूँ प्रभु की इच्छा, आप जाओ वृंदावन। वृंदावन भेजते बोले रास्ते में जाते समय भी यहाँ व्यवस्था नहीं, बनारस में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना, तो अप्लाई शायद वहीं से कर लिए, करके आगे बनारस में काशी में उन्होंने ग्रेजुएशन किए संस्कृत में, और फिर वृंदावन आए। वृंदावन में उनके ताता चाऊ से मिले, पापा और ताऊ यही बोलते उनसे मिले, और उन्हीं के तत्वावधान में रहे, और अपने चाचा जी से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण किए। पापा का दिवंगत हो चुका था, पापा का देहांत हो चुका था, तो दोनों बड़ी पापा, बड़ी पापा चाचा और ताऊ उन्हीं के संरक्षण में रहे और उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ले। समय हो रहा है नहीं तो कहानी तो बहुत लंबा है, किस प्रकार उनके जो जीवन के परिचय, किस प्रकार उनके चरित्र है, कई लीलाओं से और पता चलता है कितने कठिनाइयों के साथ। एक बार तो इतने दिग्गज विद्वान थे, व्यास के समान थे, और अपने गुरु श्री रूप गोस्वामी की रचना को एडिटिंग करते थे, हाँ अपने गुरु को एडिटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही गुरु है। एक बार एक सीनियर डिवोटी थे वल्लभाचार्य, वो एक बार आए थे, कुछ ऐसे बोल दिए कि रूप आप क्या रचना करना, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक, एनीवे आई विल करेक्ट इट। तो बैठे थे तो बोले मेरे गुरु जी के लिखा मैं करेक्ट करेगा हुई जी। तो रूप गोस्वामी जब दोपहर हुआ बोले जी महेश सर नोम को ले जाओ स्नान करा, जमुना तो बाथरूम तो था नहीं, जमुना जब स्नान करा के ले आओ लंच के पहले। तो उनको लेकर जा रहे थे, रास्ता में चांस मिला, जीव गोस्वामी पूछे बोले सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज टेल मी क्या मिस्टेक देखा आपके? नो ऐसा था ऐसा, आई विल करेक्ट इट, नो प्रॉब्लम, ही गॉट इट। तो उन्होंने काजुअली उनसे बातचीत करते करते उनको परास्त किए, प्रमाणित कर दिए मिस्टेक नहीं तो सही था, आप ही गलत थे। बल्वाचार्य वृद्ध स्नान करने के जमुना में पहुंचते पहुंचते उनका पसीना उतर चुका था, स्नान में मन क्या लगे वो तो ही सोच रहे थे ये लड़का कितना खतरनाक है, ये तो मेरा बायोडाटा ही चेंज कर दिया। इतने इसे प्रमाणित था, मान गए, बोलते मैंने गलती था। और आए आकर लंच में खाने से पहले कपड़ा तिलक करते, बोले रूप प्लीज डोंट माइंड, वो ठीक था, कोई करेक्शन नहीं करना, लड़ा चुके रूप व्यासर जी। बोले आचार्य सर ने इसे क्यों कर रहे हैं? अब खाते समय फिर बोले ये कौन है ये लड़का? भतीजा है हमारा, स्टूडेंट है मेरे से तो टीचर है। आज इनके कृपा से मेरे आंख खोला, मैंने तो आपके रचना में दोष दिख रहा था। रूप गोस्वामी सीरियस हो गए, आपने अब कुछ नहीं बोले, प्रसाद पा करके विश्राम करके बोला जरा चले गए। चले जाने के बाद जीव गोस्वामी बोला वन डिसाइपल, और उनके डिसाइपल ने उनके खास भतीजा है, परिवार के एक ही तो बेटा है। उनको बुला करके रूप गोस्वामी बोले जी तो अकाल में वैराग्य ले लिया, तेरे अभी मैच्योरिटी नहीं है, तो आ गया बंदा गेट आउट, तेरे मन में अहंकार, इतने सीनियर ड्यूटी हम उनको सम्मान देते हैं, उनके सामने चुप्ती करके उनको क्या दे रहे ना, तो लेख नहीं जा वापस आओ, निकाल दिया उनको जा वापस, जब ये मैच्योरिटी आ जाएगा दूसरे के दोस्त ना देखना तभी आ जाना। जो सब फूल मांगे पर पड़े, अरे उनका काम था, उनके गुरु कैसे सहन कर सकते, उन्होंने गलती तो था नहीं उनका इतना, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी सिखा दे रहे हैं कितने दैन्यता कितने विनम्र होना चाहिए। अब डांट कर उनको दंड देकर भगा दिए, जो उसमें गए छोड़कर गुरुचरण आश्रय छोड़ करके अपने ताऊ अपने चाचा को छोड़कर गए, पितृहीन बालक जाकर के वृंदावन से बाहर नहीं गए, जमुना किनारे बैठ करके रोने लगे, बोले मेरा क्या गति हो सकता, मैं सर्व त्याग करके भगवत कृपा से आया था और गुरु पाद आश्रय किया, वो तो गुरुदेव नहीं है तो मेरे चाचा है, ताऊ है, पारिवारिक संपर्क है, आध्यात्मिक संपर्क और व्यक्तिगत शारीरिक संपर्क भी है, और उन्होंने मुझे डांट करके भगा दिए, आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसे अनुतप्त होकर पश्चाताप करते हुए जमुना किनारे रोते रहे, बोले जा और खान पान नहीं करूंगा, यही रहूंगा, जो कुछ मुझे करना है यही करूंगा। और तो गुरु जी तो बोले मेरे मुंह देखेंगे नहीं और क्या करें, तो ही जमुना किनारे बैठते बैठते सोचते तब तक करते करते बोले कहाँ रहो, रात को विश्राम कहाँ करूँ, गर्मी बारिश, तो जमुना के धार के नीचे एक मगरमच्छ होता ना क्रोकोडाइल, वो रहने के लिए अपना एक बनाया था, एक होल गड्ढा सा बनाया था, उस गड्ढे के अंदर जाकर बैठे, कोई दरवाजा नहीं, कोई रूप नहीं, कोई फर्श नहीं, ऐसे घर कुटिया उनका, मगरमच्छ के जो खोल था जो गड्ढा था उसी के अंदर जा करके अपने शरीर को रखे, वहीं बैठे वहीं अंतर्त कर रहे थे, वहीं पत्ता लिए भोजपत्र लेके जो उनका रचना भागवत जो सीखा वहीं लिखने लगे, लिखते थे, लिखने के बाद बोलते थे किसी लिए मैं लिखता हूँ, ये मेरे गर्भ का परिचय, फेंक देते जमुना जी मुझे नहीं चाहे, मुझे भागवत को पढ़ते थे, भागवत पढ़ करके जो उनके सार समझ आता था उसको लिखते थे नोट, लिख करके फिर अंततः लास्ट में बोलते थे नहीं ये मेरा अभिनाम अभिमान के परिचय, उसको जमुना जी में बहा देते थे। हम लोग तो लिखने से पहले सेव बटन दबाते हैं डिलीट ना हो जाए, है ना नहीं, लेकिन उन्होंने जानबूझ कर फेंक देते जमुना जी में। और खाने पीने तो किसी व्यवस्था था नहीं, अटैच किचन बाथरूम 2 BHK वृंदावन में फ्लैट है तो कुछ था नहीं, लेकिन जमुना के किनारा वो मगरमच्छ के गड्ढे पर बैठ करके लिखते थे, कभी असह्य यंत्रणा होता था भूख प्यास के कारण, जाते थे कई नजदीक घर में, कोई मांग लेते थोड़ा बहुत, कोई मिला तो सही, नहीं मिला तब भी वापस आते थे, जमुना जी के पानी पी लेते थे, पानी पी करके अपने जीवन गुजार करते थे। कभी ज्यादा होता था पानी से काम नहीं, तो मिट्टी पानी में मिलाकर खा लेते थे, जमुना जी की मिट्टी और जमुना जी के पानी वही उनके आहार और पेय होता था। कभी कोई बाहर गए तो कोई रोटी मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं। इस प्रकार रह करके वही निवास करके साधन रचना करते थे, तो उनका शरीर महाव्याधिग्रस्त हो गया, जल उदरी हो गया, मतलब पेट इतने खराब हो गया, पेट फूल करके पूरा इसी दशा उनका बिगड़ गया। तो एक दिन सनातन पाद, क्योंकि वहां तो सब मधु कर मांगते थे, भिक्षा मांग, एक दिन इसी गांव में सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगने गए थे, तो एक घर के सामने मैया मधुकरी रोटी दे दो, वो मांगते हैं इसी ब्रज में, मांगे तो जो गृहपत्नी था वो बोला, बाबा वेट कर थोड़ा, मैं काम कर रही हूँ, अभी आती हूँ। सनातन पाद बैठे, थोड़ी देर आई नहीं, बोले मैया रोटी, अरे मैं बोला ना थोड़ा रोट रुको करके, मैं काम कर रही, फिर रुके, फिर बोले मैया रोटी, बोले ये कौन सा बाबा या घोड़ा चढ़ के आया है, मैं बार बार बोलता हूँ रुको, हमारे से उनका हमारा बाबा तो कितने अच्छा है, कभी मांगता ही नहीं, देने पर भी ले, ले नहीं नहीं भाई, वो जमुना मिट्टी खा कर आ जाती, ये बाबा कौन सा ऐसे घोड़ा चढ़ का है भाई, रुक नहीं सकता। सनातन सुने, घर से वो बात कर रहे थे, अपने रिएक्शन उन्होंने बोली, घर के अंदर ही थी, देखी नहीं बाबा कौन है, बोली फिर दौड़ के बाद में रोटी ला कर ले, रोटी इतने जल्दी पड़ी है तुझे, मैं थोड़ा काम में बिजी थी, वेट नहीं कर पाया, हमारे बाबा तो कहता। तो सनातन जी रोटी की इच्छा नहीं था अभी, रोटी लिए बिना बोले, भैया ना क्या, ना एक बात पूछूं बताओ, ना क्या, ना वो जो आपने बताया आपके बाबा इतने अच्छा कौन है बाबा, कोई है परिचय, ना हाँ हमारे बाबा जमुना किनारे रहता ना, कितने अच्छा है, कितने वैरागी है, कितने त्यागी है। तो उनके गुणगान किया ब्रजमा माई ने, तो उनसे एड्रेस लेकर के जो समय पहले खाऊंगा क्या, पहले देखता हूँ मैं ब्रज के हो करके इतने मेरे से भी सुपीरियर कोई बाबा है, पहले उनको देखता हूँ, ओ जी कौन है। आप जा करके देखे, वो तो और कोई नहीं थे, कौन थे, उनके अति आदर के भतीजे, एकमात्र उनके परिवार के औलाद संतान, सिजी बाज ऐसे दशा में पड़ा है, इतने व्याधिग्रस्त दशा, रो पड़े सनातन, बोले क्या कर रखा, बोले क्या करूं, आप लोग ने त्याग दिए, यहीं बैठा हूं, कहां जाऊं, ऐसे रख। तो उनको सनातन गोस्वामी लेकर के बोले चलो मेरे साथ, लेकर के गए बाहर में खड़े, बोले रूप ना भाई साहब, ना आपका वो पूरा हुआ ना नहीं रचना, भक्ति साध रचना ना, कहाँ हो पाता है, इतने सारे काम करता हूँ, जीव होता जल्दी हो जाता, एडिटिंग कर लेता, मुझे सभी काम खुद करना पड़ता, ना जीव होता, तो जीव दया करने के लिए महाप्रभु सिखा, तो जीव को दया कैसे कर दिया आपने, ऐसे डांट करके फिर उनको मिलाए। फिर दोनों गुरु शिष्य का, भतीजे और चाचा का फिर मिलन हुआ, फिर मिलन हुआ, फिर उन्होंने सहायता किया, उनके पास में रखे, रूप गोस्वामी अनुताप किए, बोले हाँ आपका होना बहुत जरूरी है। तो इसे जीव गोस्वामी जिनके जीवन में इस प्रकार के कठिनाई, इस प्रकार, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं छोड़े थे, इतने कठिनाई के सामना पर, हम लोग को थोड़ा सा लिव द मोमेंट, फॉरगेट इट, लेकिन उनकी कठिनाई की तो देखो, फिर भी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ रहे, और तभी उनको फिर इस प्रकार की स्थिति हुआ। और वो जो लीक करके रचना भागवत पाठ अंडरस्टैंडिंग जो फेंक देते थे जमुना जी में, वो बह करके आता था कैसी घाट में, सब पंडित लोग ब्राह्मण लोग जाते थे स्नान करने के लिए, विशेष करके भट्ट गोस्वामी अन के उनके शिष्यगण जाते थे, वो देखते थे बह करके आ रहे, बोले देखते थे, लिखा है संस्कृत में लिखा, इतनी बढ़िया बात लिखा, उसको कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करते करते सब रखते थे, बाद में जो स्टक रखा गया था वही षड दर्शन बना, जो छह संदर्भ है वही संदर्भ जीव गोस्वामी इसी प्रकार से रचना किए थे, वही छह संदर्भ है, और जिसको फेंक दिए थे जमुना जी में, उसको उठा के लाया गया था। वही संदर्भ जो वैष्णव जगत के संपूर्ण सिद्धांत सार के सार शिरोमणि है वही षण संदर्भ है। तो इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी पाद उनके व्यक्तित्व उनके साधना उनके समर्पण उनकी क्या कहा जाए उनके लिए, इस प्रकार के थे जो हम जैसे जीव के लिए ही गोस्वामी थे श्री जीव गोस्वामी। और साक्षात भगवत पार्षद तो थे ही, लेकिन कई प्रकार से हम उनके ऋणी हैं जो हमको दिए हैं उन्होंने सबको सिद्धांत साहित्य आदि दे करके। तो आज उनके आस्थिति है, तो इसलिए हम बाकी कुछ लायक तो नहीं है, कम से कम आज तिथि के दिन उनको प्रार्थना करते हैं उनके श्री चरण में कि उनके थोड़ी बहुत कृपा आशीर्वाद से तो जितने निष्ठा गुरु भक्ति गुरु के प्रति कृष्ण के प्रति गौरांग महाप्रभु के प्रति धाम के प्रति और जिस प्रकार के उनके अभिज्ञता निष्ठा और उनके अंडरस्टैंडिंग आचरण जिस प्रकार था वो तो हम सपनों सोच नहीं सकते, लेकिन उनके कृपा से थोड़े बहुत श्री गुरु गौरांग के प्रति हमारा सच्चे विश्वास प्रेम आ जाए भरोसा आ जाए तो हमारा इस नालायक जीवन भी सफल हो जाए। इस प्रकार के कामना के साथ उनके श्री चरण में आज हमारा श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद की समवेत भक्त वृंद की गोर हरि के मान।